नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनः मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और कई खबरों के बाद 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।